अध्याय छोटी हुई सांसें। सड़क पर कार की रफ्तार अब धीमी हो गई थी। बाहर की बत्तियां धुंधली थीं और हवा में एक अजीब सी खामोशी तैर रही थी, जैसे कोई रात अपने फैसले पर पछता रही हो। अखिल ने अचानक गाड़ी मोड़ दी किसी सुनसान गली की ओर। रैना चौंक गए। कहाँ ले जा रहे हो? उसकी आवाज में घबराहट थी। शांत रहो, अखिल ने ठंडे स्वर में कहा, कुछ बात करनी है। बात क्लब में नहीं कर सकते थे? उसने प्रतिवाद किया। वहां शोर था, यहां सिर्फ सन्नाटा है। अखिल की आंखें सीधे सड़क पर थीं, लेकिन उसका गला भारी हो गया था। कुछ मिनटों बाद गाड़ी एक सुनसान सी जगह पर आकर रुक गई, शहर की परिधि पर, जहां अब भी पुराने अधखुले फार्म हाउसों के अवशेष मौजूद थे। अखिल ने गाड़ी बंद की। रैना ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा लॉक था। अखिल, उसने धीमे से कहा, तुम फिर वही कर रहे हो। क्या वही? अखिल उसकी ओर घूम गया। तुमसे सवाल पूछना, तुम्हारी आंखों में झांकना और जानना कि आखिर तुम इतनी बदली क्यों हो। क्योंकि तुमने मुझे बदल दिया, रैना ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। एक ऐसी लड़की जो ख्वाब देखती थी, वो अब रात में सिर्फ झूठे होठों से हंसती है ताकि किराया चुका सके। अखिल चुप रहा। उसका चेहरा कुछ पलों के लिए ढह गया। मैं जानता हूं, उसने कहा, मैंने बहुत कुछ बर्बाद किया है, लेकिन मैं खुद भी उस बर्बादी में फंसा हूं। रैना, हर बार जब तुम्हें देखता हूँ, मुझे वो सारी रातें याद आती हैं जब तुम्हें तकलीफ देकर खुद को ताकतवर समझता था। ताकत नहीं थी वो, रैना ने धीरे से कहा, वो डर था खुद को खो देने का, और उस डर ने तुम्हें राक्षस बना दिया। एक पल की चुप्पी। अखिल ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में कोई चिंगारी नहीं थी, बस थकावट थी। मैं नहीं चाहता था कि तुम क्लब में काम करो, अखिल बोला। मैंने तुम्हें उस दुनिया से बाहर निकालने की कोशिश की थी, लेकिन नहीं, रैना ने बीच में कहा, तुमने मुझे सिर्फ अपनी दुनिया में कैद करने की कोशिश की थी, आज़ादी नहीं दी थी। जब तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारे बनाए खांचों में फिट नहीं बैठ रही, तुमने मुझे गिरा दिया। अखिल का चेहरा सख्त हो गया। और फिर भी, आज भी मैं तुम्हारे पास आता हूँ, उसने कहा। लेकिन क्यों? रैना का स्वर ऊंचा हो गया। नफरत है या मोह, या फिर सिर्फ ये अहम कि तुम्हारी छाया से मैं कभी बाहर ना निकलूं? अखिल ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके हाथ कांपने लगे। फिर अचानक उसने धीरे से रैना की कलाई थामी। मैं बस जानना चाहता हूँ, उसका स्वर बहुत धीमा था, क्या अब भी, कभी, एक पल के लिए भी तुमने मुझे महसूस किया था? रैना ने अपनी नजरें उससे चुराई। महसूस करना अब भी आता है, वो बोली, लेकिन अब वो सिर्फ दर्द होता है। जब कोई जख्म बहुत पुराना हो जाए तो वो छूने से भी टीसता है। अखिल उसके करीब आ गया। अब दोनों के बीच सिर्फ कुछ इंचों का फासला था। उसने हाथ बढ़ाया, धीरे से रैना की गाल पर उंगलियां रखी। रैना कांप गई, ना नफरत से, ना मोह से, बल्कि उन सब जज्बातों से जो सालों से दबी हुई राख बन चुके थे। रैना, उसने फुसफुसाया, अगर वक्त पीछे जा सकता। रैना पीछे हट गई झटके से। वक्त नहीं जाता पीछे अखिल, उसकी आवाज सख्त थी, तुम भी नहीं जा सकते, लेकिन मैं अब आगे बढ़ना चाहती हूँ, अपने दम पर, तुम्हारी यादों से नहीं, तुम्हारी छाया से नहीं, और उस थप्पड़ से तो बिल्कुल नहीं। अखिल की उंगलियां वहीं ठिठकी रह गईं, हवा में। उसने हाथ गिरा दिया। रैना ने दरवाजा खोला, इस बार वो अनलॉक था। वो बाहर निकली, अंधेरे में, चांदनी के नीचे, और अपनी चप्पलें उतार दी। नंगे पांव चलने लगी, जमीन की ठंडक को महसूस करती हुई, जैसे खुद को सजा दे रही हो, या फिर किसी नई शुरुआत की तैयारी। अखिल कार से बाहर नहीं आया, उसने सिर्फ देखा उस लड़की को जो कभी उसकी बीवी थी और अब उसकी सबसे बड़ी हार। रैना सड़क के किनारे तक आई और वहीं बैठ गई। उसने अपनी आंखें बंद की और एक फुसफुसाहट से भगवान से पूछा, क्यों भेजते हो उसे बार बार मेरी राह में? क्यों मेरी मजबूरी को उसका तमाशा बनाते हो? हवा ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ उसकी बांह पर हल्की सी सहरन छोड़ दी, जैसे कोई अदृश्य हाथ कह रहा हो, सुन रही हूं रैना, सब देख रही हूं।